पृष्ठ संख्या 26, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1897 से 1961 ईस्वी। छायावादी कवियों में सबसे प्रखर, विद्रोही और ओजपूर्ण व्यक्तित्व वाले कवि निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मोदिनीपुर जिले में हुआ था। पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र उन्नाव के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे और महिषादल राज्य में राजकीय सेवा में कार्यरत थे। अल्प वय में ही माता पिता के निधन और कालांतर में प्रिय पुत्री सरोज के असामयिक निधन से कवि निराला का हृदय विक्षुब्ध हो उठा। उस पर साहित्य जगत की उपेक्षा ने उन्हें विद्रोही बना दिया। उनके समकालीन कवि पंत ने लिखा कि यूनाइटेड कामा निराला का आविर्भाव नई काव्य चेतना के आकाश में एक तेजोमय धूम केतु के समान हुआ। एक प्रखर धूम केतु जिसका सिर अद्वैत मणि के समान देदीप्यमान रहा और जिसके पीछे अपनी ही व्याप्ति में खोए ज्योतिष वाष्पों की एक लंबी धूमिल पूंछ भी लिपटी रही। इन्वर्टेड कॉमा बंद। निराला ने अपने विद्रोहशील व्यक्तित्व को लेकर जब मन के प्रबल आवेगों को वाणी दी, तब छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तन हुआ। इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनी निराला की प्रथम रचना जूही की कली 1916 ईस्वी। निराला का जीवन पंत की तरह प्रकृति की गोद में नहीं बल्कि संघर्षमय जीवन की कठोर भूमि पर पला था, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में सहज ही दिखाई पड़ता है और जिसके कारण वह महाप्राण कहलाए। निराला छायावाद के सर्वाधिक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं। वास्तव में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों ही काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां उनके काव्य में विद्यमान हैं। साम्राज्यवादी और सामंती ताकतों के विरुद्ध निराला जीवन पर्यंत लड़ते रहे। उनके स्वयं के जीवन संघर्ष ने उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा मानवतावादी रचनाकार बना दिया। निराला ने भी प्रसाद की भांति गद्य पद्य में समान लेखनी चलाई, पर प्रतिष्ठा उन्हें एक महाकवि के रूप में ही अधिक मिली। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इन्वर्टेड कामा प्रसाद की तरह निराला ने भी विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग किया, परंतु जहाँ प्रसाद कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी तथा आलोचना में भी अपने को कुशलतापूर्वक व्यक्त कर सके, वहीं निराला का सफल माध्यम कविता ही है। यूनाइटेड कॉमा बंद। निराला के जीवनीकार एवं उनके साहित्य के मर्मी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी मानना है कि यूनाइटेड कॉमा पृष्ठ संख्या 27, निराला मुख्यतः कवि हैं। काव्य के स्तर पर ही उनकी प्रतिभा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसी क्रम में प्रसिद्ध छायावादी समीक्षक आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने निराला के काव्य को शताब्दी का काव्य और निराला को शताब्दी का कवि कहा है। निराला ने स्वयं गद्य को जीवन संग्राम की भाषा और कविता को परिवेश की पुकार कहा है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। निराला ने स्वयं जीवन में कोई पत्रिका नहीं निकाली, किंतु वह अपने समकालीन अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, जैसे मतवाला, सुधा, समन्वय, माधुरी आदि। कुछ समय तक उन्होंने मतवाला और समन्वय का संपादन भी किया था। निराला की रचनाओं का अवलोकन भी हम दो रूपों में कर सकते हैं। काव्य कृतियाँ। निराला की काव्य कृतियों का प्रकाशन काल 1923 ईस्वी से लेकर 1958 ईस्वी तक फैला हुआ है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1943, अपरा 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 तथा आराधना 1953 और गीत गुंज 1958 ईस्वी उनकी काव्य कृतियाँ हैं। अनामिका उनका पहला काव्य संग्रह है तो जूही की कली पहली कविता 1961 ईस्वी में प्रकाशित पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझ गया है, निराला की अंतिम कविता है। निराला ने कामायनी जैसा कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा, पर तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्यात्मक औदार्य से युक्त गंभीर रचनाएं अवश्य प्रस्तुत की। वास्तव में ये रचनाएं ही हिंदी में निराला की अक्षय कीर्ति की आधार हैं। तुलसीदास जहाँ एक सांस्कृतिक काव्य है वही सरोज स्मृति शोक काव्य। राम की शक्ति पूजा निराला का ही नहीं अपितु संपूर्ण छायावाद का शक्ति काव्य है। इसी प्रकार कुकुरमुत्ता उनकी एक प्रगतिशील रचना है। ख गद्य कृतियाँ। निराला की गद्य रचनाओं में उपन्यास, कहानियाँ, रेखाचित्र और समीक्षा ग्रंथ मुख्य हैं। उनके उपन्यास में अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1933 तथा निरुपमा 1937 मुख्य हैं, जबकि कुल्ली भाट 1938 एवं बिल्लेसुर बकरिया 1942 उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। इसी प्रकार प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, पृष्ठ संख्या 28, चाबुक 1942 और चतुरी चमार 1945 उनकी कहानियों का संग्रह है। रविंद्र कविता कानन तथा पंत और पल्लव निराला लिखित समीक्षात्मक कृतियां हैं। निराला के काव्य व्यक्तित्व पर भारतीय नवजागरण और रविंद्रनाथ का सहज ही प्रभाव है। उनके काव्य में आए हुए जागरण गीत जहाँ नवजागरण के प्रभात की ओर इशारा करते हैं, वहीं नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता पर रविंद्र संगीत की छाया है। निराला जन पक्षधरता और क्रांति के कवि हैं। उनकी बादल राग आदि कविताओं की भावभूमि भी यही है। छायावाद में निराला की सबसे बड़ी देन मुक्त छंद का प्रवर्तन है। कविता की छंदो मुक्ति को वह मनुष्यों की मुक्ति से जोड़कर देखते हैं। उनके द्वारा आविष्कृत जिस छंद को प्रारंभ में विरोधियों द्वारा रबर छंद, केचुआ छंद कहकर परिहास किया गया, उसका प्रभाव आज तक अमर है। निराला और राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास 1934 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी और राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी महाकवि निराला की काव्य प्रतिभा के धवल स्मारक हैं। इन रचनाओं में निराला भाव, भाषा, छंद आदि समस्त का अतिक्रमण कर जाते हैं। तुलसी और रविंद्रनाथ निराला के दो प्रिय कवि हैं। तुलसीदास में देश के जातीय एवं सांस्कृतिक गौरव का चित्रण है। निराला ने तुलसीदास को भारत का अंधकार हरण करने वाला महापुरुष कहा है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, जिससे कथानक का मूल कवि की पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यूनाइटेड कॉमा निराला दुख, संघर्ष और मृत्यु के कवि हैं। यूनाइटेड कॉमा बंद। प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी से अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी तक। निराला काव्य में दुख, संघर्ष और मृत्यु का यह क्रम बराबर चलता रहा है। निराला ने प्रसाद की तरह कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा, पर उनकी लंबी कविताओं में महाकाव्य सा औदात्य सर्वत्र दिखाई पड़ता है। राम की शक्ति पूजा को छायावाद का शक्ति काव्य कहा जाता है, जिसका कथानक मूलतः बंगला के कवि कृतिवास के रामायण से ग्रहित है। कुछ लोग देवी भागवत पुराण तो कुछ शिव महिमन स्त्रोत को भी इसकी प्रेरणा मानते हैं, पर इस पर सर्वाधिक प्रभाव कृतिवास के बंगला रामायण का ही है। डॉक्टर नंद किशोर नवल के अनुसार यूनाइटेड कॉमा कृतिवास अनुमानतः तुलसीदास के 100 वर्ष पहले हुए थे। यूनाइटेड कॉमा बंद। निराला ने बंगला के महान कवियों माइकल मधुसूदन दत्त पृष्ठ संख्या 29, रविंद्रनाथ टैगोर तथा कृतिवास, चंडीदास, गोविंददास आदि के काव्य का गहन अध्ययन किया था। कृतिवास के रामायण में राम की शक्ति पूजा के प्रसंग का बड़ा ही मनोहारी वर्णन हुआ है, जिसका कथानक निराला की शक्ति पूजा से हूबहू मिलता है। इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। राम और रावण के बीच विकट युद्ध चल रहा है। कभी राम मूर्छित होते हैं, कभी रावण। रावण की शक्तियों के आगे राम असहाय हो जाते हैं। पराजय की आशंका राम के मन को घेर लेती है। एक बार तो रावण ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि राम पक्ष के समस्त वीर योद्धा भाग खड़े हुए। राम वध हेतु तो उसके सिर को काटते हैं, लेकिन वह फिर धड़ से जाकर जुड़ जाता है। अंततः रावण स्तुति कर शक्ति को प्रसन्न कर अपने पक्ष में कर लेता है, जिससे राम और भी भयभीत और दुखी हो जाते हैं। समस्त सेनापतियों के साथ मंत्रणा करते हैं, जिसमें जंबवान उन्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करने और पूजने का परामर्श देता है, जिसे राम स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण के नेतृत्व में युद्ध चलता रहता है। राम की आज्ञा से हनुमान देवीदह से देव दुर्लभ 108 नीलकमल पूजा हेतु लाते हैं और ब्रह्मा की प्रेरणा से राम दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए जब दुर्गा अंतिम नीलकमल गायब कर देती हैं, राम उसे न पाकर पहले तो अत्यंत दुखी हो जाते हैं, फिर शीघ्र ही उनको याद आता है कि बचपन में माता उन्हें राजीव नयन नीलकमलाक्ष कहती थी। वे दुर्गा को नीलकमल की जगह जैसे ही अपनी एक आंख चढ़ाने को उद्यत होते हैं, नभ में दुर्गा का प्राकट्य होता है और वह राम का हाथ पकड़ लेती हैं तथा उन्हें विजय होने का वरदान देकर अंतर्धान हो जाती हैं। यही कथानक कृतिवास के रामायण का भी है और आंशिक परिवर्तन के साथ निराला के राम की शक्ति पूजा का भी। कृतिवास रामायण से अलग निराला ने इसमें कुछ अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं, जैसे शक्ति की मौलिक कल्पना करवाना और यह परामर्श विभीषण से ना कर जाम्बवान से करवाना। इसी तरह रामायण की अपेक्षा शक्ति पूजा के राम को अधिक मानवीय युगीन और आधुनिक बनाना युद्ध की भयानक विभीषिका में भी राम द्वारा जनक वाटिका में सीता के प्रथम मिलन को याद करना आदि। भाषा और शिल्प आदि सभी दृष्टियों से निराला ने इसे बहुत ही गरिमापूर्ण औदात्य प्रदान किया है। हिंदी के सभी बड़े आलोचकों ने इसे कालजयी रचना मानते हुए निराला की महाकविता करार दिया है। वस्तुतः इसमें राम के संघर्ष के बहाने स्वयं कवि निराला का जीवन संघर्ष भी झलक उठा है। राम का संघर्ष वस्तुतः परोक्ष रूप से निराला का ही संघर्ष है। यथा पृष्ठ संख्या 30, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जीवन की यह हाहाकारी और आत्मभर्त्सनापन केवल राम का ही नहीं निराला का भी है। नंद किशोर नवल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा निराला का संघर्ष साहित्य के विषय वस्तु और कला दोनों ही क्षेत्रों में नए मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए था, जिसमें उन्हें विकट प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला की राम की शक्ति पूजा को गाथा काव्य कहा है। राम दैवी तो रावण आसुरी शक्ति का प्रतीक है, राम सत तो रावण असत का प्रतीक है। इन दोनों के बीच अपराजेय अनिर्णित युद्ध आज भी मनुष्य के मनोकोशों में चल रहा है। दैवी और आसुरी मनोभाव आज भी हमारे भीतर विद्यमान है और इनमें पारस्परिक अंतर्द्वंद आज भी चल रहा है। तुलसी ने मानस में इसका समाधान अपने समय में अपने तरीके से किया था और निराला ने आराधना का दृढ़ आराधन से उत्तर देकर तथा शक्ति की मौलिक कल्पना कर आधुनिक समय में अपने तरीके से किया है। कथ्य के अतिरिक्त समास बहुला भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली नाटकीयता संवाद बिंब प्रतीक आदि शिल्प की भी दृष्टि से यह निराला की उदात्त सर्वश्रेष्ठ कालजयी रचना है।